స్తోత్ర శ్రీష్ణ అభయ చరణాల విందేసి భక్తి విధాన స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద్ కి శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద దేవ్ కి శ్రీ శ్రీ సీతారాం లక్ష్మణ హనుమాన్ కి శ్రీ శ్రీ పంచతత్వ కి గ్రంథరాశ్రమద్ భగవద్గీత కి సమవేత గౌర భక్త వృంద కి నితాయ గౌర ప్రేమానందే ఆల్ గ్లోరీస్ అసెంబ్లీ డివోటీస్ ఆల్ గ్లోరీస్ అసెంబ్లీ డివోటీస్ ఆల్ గ్లోరీస్ అసెంబ్లీ డివోటీస్ ఆల్ గ్లోరీస్ శ్రీ గురు అండ్ గౌర सब मेरे पीछे दोहराइए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराश्रम भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 68 और 69 जो इस महीने में अधिकतर चर्चा करते हैं, तो मैं दो श्लोक पढ़ता हूं, फिर हम समझने का प्रयास करेंगे। एदं परमं गुह्यं मद् भक्तेषु विनाशति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैशत्य संशयः। जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वो मेरे पास वापस आएगा। तात्पर्य, सामान्यतः ये उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में भगवद गीता की विवेचना की जाए, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं हैं वे न तो कृष्ण को समझेंगे न ही भगवद गीता को। जो लोग कृष्ण को तथा भगवद गीता को यथारूप में स्वीकार नहीं करते उन्हें मनमाने ढंग से भगवद गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल नहीं लेना चाहिए। भगवद गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो। ये एकमात्र भक्तों का विषय है, दार्शनिक चिंतकों का नहीं। लेकिन जो कोई भी भगवद गीता को यथारूप में प्रस्तुत करके करने का सच्चे मन से प्रयास करता है वो भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है और शुद्ध भक्ति में जीवन को प्राप्त करता है। ऐसी शुद्ध भक्ति के फलस्वरूप उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। अगला श्लोक 69। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभिस्सं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च अदितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो दो श्लोकों का अनुवाद फिर से पढ़ता हूँ। जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वो मेरे पास वापस आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। तो भगवद गीता, अभी अभी भगवद गीता जयंती हमने मनाई, कौन सी डेट थी? 2 दिसंबर। तो भगवत गीता किंचित अधीता गंगा जल लव कनिका पीता। तो भगवत गीता की महिमा कई सारे शास्त्रों में वर्णित है, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ये सारे जो पुराण है भगवत गीता की जो महिमा है, ग्लोरीज है, उसकी चर्चा करते हैं। और वो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भगवत गीता को पान करता है, भगवत गीता को पीता है, जैसे गंगा का जल कोई पीता है एक बार भी, या गंगा जल से स्नान करता है, तो उसका क्या लाभ है? भगवत धाम जाता है वो सारे पापों से मुक्त होकर। तो उसी प्रकार से ये जो भगवत गीता है इसका किंचित मात्र किसी एक व्यक्ति को स्पर्श हो जाए इसके ज्ञान का, तो लेकिन जो व्यक्ति अभक्त है वो इस भगवत गीता रूपी गंगा जल से सदैव दूर रहता है, वो नजदीक जाना नहीं चाहता। तो भगवान और ये पुराण हमें प्रेरित करते हैं कि भगवत गीता एक ऐसा गीत है जो भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए गाते हैं। किसके लिए गाते हैं? कब गाया था? युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि। कृष्ण भगवत गीता का उपदेश देने के लिए किसी को चूज करना चाह रहे थे, ढूंढ रहे थे। और महाभारत से युद्ध के पूर्व भगवान एक स्थान भी ढूंढ रहे थे कि कौन सा ऐसा स्थान है जहां ये उपदेश दिया जाए, हाँ, तो वो सफल हो सकता है। और ऐसा स्थान वो युद्ध के लिए निश्चित कर रहे थे भगवान कि जहां वैराग्य व्यक्ति के अंदर आ जाए, ऐसा स्थान ढूंढ रहे थे कृष्ण युद्ध से पहले। तो भगवान जब भ्रमण कर रहे थे तो भ्रमण करते करते कहां पहुंचते हैं? कुरुक्षेत्र। जब भगवान कुरुक्षेत्र पहुंचे तो अलग अलग स्थानों में अलग अलग चीजें भगवान ने देखी। कुरुक्षेत्र में जब पहुंचे तो वहां एक किसान को भगवान ने देखा, और वो किसान जो खेती थी उसमें जल भर रहा था, और उसका जो बांध है वो टूट के जल बाहर जा रहा था, तो उसको रोकने के लिए कोई चीज ढूंढ रहा था कि क्या, किस चीज से रोका जाए। मिट्टी से रोकते हैं ना, जल टूटता है। तो उसने देखा कि उसका बेटा वहां से आ रहा था दोपहर के लंच ब्रेक में उसके लिए भोजन लेकर। तो बच्चा पिताजी पिताजी कहते हुए आ रहा था भोजन लेकर, भगवान दूर से देख रहे हैं। तो उस पिता ने क्या किया, वहां जल को रोकने के लिए किसका इस्तेमाल कर दिया? बच्चे को उठाया, छोटा सा था, उसको रख दिया उसने मेन जो बाढ़ है बांध, और उससे पानी रुक गया। मतलब भगवान ने सोचा ये तो आश्चर्य है, इस स्थान का प्रभाव क्या है, इस स्थान में अनासक्ति है, आसक्ति नहीं है, डिटैचमेंट है, वैराग्य है, और यही स्थान उचित है युद्ध के लिए। क्योंकि अर्जुन को किनसे लड़ना था? ये तो अपने परिजनों से, चाचा बंधु मित्र है, मामा है, ताऊ है, गुरु है, इन सब से युद्ध करना था। भगवान ने सोचा कि नहीं, ये उचित स्थान है। तो इसलिए हमारे जीवन पर भी स्थान का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए अपना रहने का स्थान चूज करना चाहिए। भजन करने के लिए भी स्थान का प्रभाव पड़ता है, भक्ति करते समय भी। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, हाँ, कि जो सत्वगुण का स्थान है वो क्या है? फॉरेस्ट है। और शुद्ध सत्व का स्थान क्या है? टेम्पल का वातावरण है। जैसे ये लक्ष्मण, हाँ, जब सीता देवी और राम के साथ जब वनवास में जा रहे थे, और सीता देवी का जब अपहरण हो गया, अपहरण नहीं हुआ था, तो उनके साथ जब जाते थे, चलते चलते ये लक्ष्मण के मन में कभी कभी विचार आते थे कि ये क्या कर रहा हूं मैं, हाँ ये इतने सारे इनकी सेवा कर रहा हूं, छोड़ देना चाहिए मुझे इनको। इन्होंने दशरथ ने तो इनको बोला था जाओ वनवास ले लो, मेरे लिए तो नहीं, लेकिन मैं क्यों इनके साथ जा रहा हूं। मतलब सेवा न करने की भावना उनके अंदर बारंबार आ रहे थे और उसको छोड़ने के लिए लक्ष्मण तैयार रहते थे। लेकिन आगे जाते जाते ये लोग सब एक स्थान में बैठते थे तो फिर लक्ष्मण को हृदय में विचार आता था, नहीं इनकी सेवा ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। हमारे साथ भी होता है ना, जब हम ऐसे किसी स्थान में जाते हैं जब भक्त नहीं है, भक्तों का संग नहीं है, समुदाय नहीं है, माया का बहुत प्रभाव है, उठपटांग इधर उधर का भोजन खाते हैं, तो हमारे मन में रजोगुण बढ़ता है। फिर भक्त सोचते कि ये क्या है, हरे कृष्ण जब आज छोड़ देता हूं, आज ढीले कोई देखने वाला तो है नहीं, आज पढ़ूंगा नहीं, आज कुछ माला करूंगा नहीं, हाँ क्या है इतनी सारी सेवा करने का। तो ये सब चीजें हैं, स्थान और भोजन और संग, इन चीजों का प्रभाव के कारण हम भगवत सेवा से दूर जाना चाहते हैं। तो लक्ष्मण के अंदर ये द्विधा हमेशा आते थे। उन्होंने राम से पूछा कि ये मेरे मन में चल रहा है क्या करें। राम ने देखा कुछ तुम साथ में कुछ लेके तो नहीं जा रहे हो। एक स्थान में आसुर का वध हुआ था, उस स्थान की मिट्टी ये खा अपने जेब में लेके आए, हाथ में किसी इसमें उन्होंने रखे थे, और जब वो रखते थे साइड में तो बिल्कुल ठीक, और जो वो साथ में होते थे तो उसका प्रभाव, क्षेत्र का प्रभाव। वैसे भीम के साथ भी हुआ था, भीम रोज अपनी माता कुंती को मिलने जाते थे, तो जाते थे तो वो वहां होती नहीं थी, प्रणाम करने जाते हैं वो जाते थे कहां दूर, तो वहां जाते इंतजार करना पड़ता था कुंती आते हुए, तो कुंती जब तक आती नहीं थी तब तक भीम खड़े रहते थे बहुत लंबा समय। तो उनके विचार आते थे, नहीं नहीं मुझे तो ना शादी कर लेनी चाहिए, मुझे ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बहुत सारे विचार आते थे। पहले तो उनको लगता था नहीं नहीं ब्रह्मचर्य रहना चाहिए बेस्ट लाइफ है। तो उन्होंने सोचा क्या करूं, तो वो किन के पास गए, युधिष्ठिर के पास। तो उन्होंने कहा ये स्थान का प्रभाव है, युधिष्ठिर ने कहा ये मदरलैंड, मदरलैंड का माय भूमि कहते हैं ना, उसका प्रभाव है। तो उसी प्रकार से भगवान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि को चूज कर लेते हैं, क्योंकि उसका प्रभाव क्या है, आसक्ति का स्थान नहीं है वहां, क्या है अनासक्ति। तो भगवद गीता का उपदेश इसलिए है अनासक्ति को हमारे हृदय में जागृत करना, क्योंकि हम इस संसार में इतने अधिक आसक्त हैं और आसक्त होने के लिए सारे प्रयास हो रहे हैं। वैसे देखा जाए गंभीरता से हम देखें तो हर एक व्यक्ति कार्य कर रहा है किस लिए, मरने के लिए। किसके लिए, अल्टीमेटली सारे कार्य क्या कहा दे जा रहे हैं हमें, मृत्यु। सुबह स्कूल क्यों जा रहा है, बड़ा क्यों हो रहा है, धन क्यों कमा रहा है, सब कुछ एंडिंग कहां है, मृत्यु। तो इसलिए वास्तव में ये जो भगवत गीता है ये हमें अनासक्ति की शिक्षा देते हैं, और जब तक हम अनासक्त नहीं होंगे इस संसार से तब तक ये संसार हमें कष्ट देता ही रहेगा। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन पद्म पत्रम वाम्बसहा, इस संसार में रहते हुए कई बार व्यक्ति सोचता है नहीं सांसारिक जीवन में बहुत कष्ट है। कुछ लोग कहते ना हाँ कि आप लोग तो मंदिर में रहते हैं आपको पता नहीं क्या टेंशन है, सब्जी की क्या रेट्स है, टमाटो का क्या रेट्स है। एक माता जी हम पूना चंपल में थे शुरुआत के दिनों में, वो कंप्लेंट करते हुए आ गई, वो कहते आपके टेंपल के ब्रह्मचारी को तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो 9 बजते तो प्लेट लेके घूमते वहां प्रसाद के लिए, उनको पता ही नहीं कि राइस कितना किलो का है, आटा आलू टमाटर मिर्च ये कुछ लेना देना नहीं उनको पता ही नहीं है। हाँ तो कई बार हमें लगता है कि हम बहुत सांसारिक जीवन में हैं, हाँ तो हमसे भक्ति नहीं हो सकती। तो भक्ति किसी चीज पर निर्भर नहीं है, भक्ति क्या है स्वतंत्र है, लेकिन उसके लिए सीरियसनेस चाहिए, गंभीरता चाहिए, सिंसियर होना चाहिए। तो भक्ति स्वतंत्र है, उसके लिए लेकिन सिंसियरिटी की आवश्यकता है। जब हम सिंसियर होंगे तो चाहे हम किसी भी वर्ण या आश्रम में क्यों ना हो, उससे प्रभावित नहीं होंगे, हम भक्त बन सकते। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इस संसार में व्यक्ति को उस कमल फूल की तरह रहना चाहिए जो कीचड़ में रहता है या जल में रहता है, लेकिन उसका स्पर्श करता नहीं, सदैव उससे ऊपर होता है। तो उसी प्रकार से भक्त इस सांसारिक जगत में दिखाई देता है, कई कार्यों में व्यस्त है, लेकिन वास्तव में उसकी चेतना इस संसार में नहीं है। उसकी चेतना किस में लगी है? कृष्ण में लगी है। इसलिए तो प्रभुपाद ने ये नाम दिया है इस आंदोलन को। सारा जो भक्ति का खेल है वो चेतना पर निर्भर है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना, ये भावना मायने रखती है। भावना मतलब हम कृष्ण में आ सकते हैं तभी कृष्ण भावना हम हो सकते हैं। हम किसी और वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में आ सकते हैं तो हम कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकते। तो भगवत गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार से इस संसारिक, इस भौतिक संसार से अनासक्ति जागृत करें और भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति का विकास करें। तो भगवान इन दो श्लोकों में एक सूत्र हमें देते हैं। बल्कि भगवत गीता क्या है, मैं आज सोच रहा था कि भगवत गीता एक कॉलिंग कार्ड है। जैसे आप कॉलिंग कार्ड होता है ना, मोबाइल के लिए रिचार्ज करते ना, पहले तो होता था, अभी पता नहीं, कॉलिंग कार्ड होता है, विदेशों में भी होता है। तो ये कॉलिंग कार्ड है जहां कृष्ण हमें भुला रहे हैं। वैसे आपको कृष्ण के हृदय को जानना है तो भगवत गीता का गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए। और भगवत गीता का अध्ययन कैसे करना चाहिए? भक्तों के संगति में, भक्तों के माध्यम से हम समझे। कई बार हम सोचते हैं भगवत गीता तो वितरण करने के लिए बनी है, दूसरों के लिए, लेकिन मेरे लिए नहीं। हमने ये सारी स्टोरीज तो सुनी है, भगवत गीता पढ़ के भक्त बन गया थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद वो पढ़ता नहीं है। हम सब लोग भी चाहे तो थोड़ा सा संपर्क में आकर भक्त तो बन गए, लेकिन आने के बाद गंभीरता से भगवत गीता का अध्ययन नहीं करते। तो प्रभुपाद ने बहुत कष्ट उठाते हुए भगवत गीता का अनुवाद किया है। रात रात जगे हैं प्रभुपाद, 11 बजे उठ जाते थे या 12 बजे, और पूरी रात क्या करते थे, इन ग्रंथों का लिखते थे, अनुवाद करते थे। और ये ग्रंथ हम सब के लिए है। तो भगवत गीता को समझना होगा भक्त के माध्यम से। इसलिए भगवान कहते हैं दो चीजें अर्जुन में योग्यता थी गीता को समझने के लिए, क्या थे? भक्तो आसी और सखा आसी। क्या थे दो? भक्त आसी, हे अर्जुन तुम भक्त हो, हे अर्जुन तुम मेरे सखा हो। केवल ये भी काफी नहीं है, लेकिन इससे परे भी एक अंडरस्टैंडिंग अर्जुन की थी। वो क्या थे कि अर्जुन उनके मित्र होते हुए भी कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में उन्होंने स्वीकार किया था। इसलिए कई बार हमें यह विश्वास ना भी हो, भगवत गीता हम शुरुआत में पढ़ते तो इतना विश्वास नहीं होता कि कृष्ण भगवान है, क्योंकि इतने सारे देवी देवता भी तो है हमारे आसपास, थोड़ा सा डर लगा रहता है। लेकिन गीता को समझने के लिए प्रभुपाद कहते हैं शुरुआत में हम अपने दिमाग में ये डाल दें कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, और अध्ययन करना शुरू करें, फिर आप भगवत गीता हमें क्या होगी, रिवील होगी, समझ में आने लगेगी। इसलिए अच्छा गीता में कहा गया है जो व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करता है गंभीरता से, भगवान कहते वो व्यक्ति अपने बुद्धि के द्वारा मेरी पूजा कर रहा है। कई बार पूजा का मतलब ये नहीं कि घंटी हिलाना, अगरबत्ती बजाना। प्रभुपाद जब इसको जुहू टेम्पल बना रहे थे तो एक रिपोर्टर ने कहा, स्वामी जी इतने सारे मंदिर तो पहले से ही है भारत में, आप और एक मंदिर क्यों बना रहे हो, इतने सारे मंदिर हैं। उन्होंने कहा वो सब घंटी बजाने वाले मंदिर हैं, अरे बेल रिंगिंग टेम्पल्स, प्रभुपाद ने बोला, वहां क्या है, केवल घंटी बजती है। अब देखो जब आरती होती है दूसरे मंदिरों में क्या होता है, जोरदार घंटे बजाते रहते हैं। इवन आप वृंदावन जाओगे तो आजकल तो घंटे बजाने वाले लोग ही नहीं रहे, मंदिर कोई आता ही नहीं, तभी वो मशीन आ गई है। मशीन ही घंटी बजाती है, ढोल बजाती है, सब कुछ बजाती है। पुजारी बटन दबाता है और आरती करता रहता है, पीछे डिंग डोंग डिंग होता रहता है। तो इस प्रकार से ये टेम्पल्स केवल घंटी बजाने वाले हैं। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, हमारे मंदिरों की विशेषता है कि यहां भक्तों का समुदाय है, क्योंकि भक्ति अकेले नहीं की जा सकती। कोई व्यक्ति सोच सकते कि क्या घर में रह के भी तो कर सकता हूं, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। जब आप बीमार हो तो हॉस्पिटल जाते रहते हो कि नहीं, हफ्ते में एक बार डॉक्टर बुला ही लेता है, 15 दिन में बुला ही लेता है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद ने कहा ये मेरे टेम्पल्स डिफरेंट है, ये मंदिर उस हॉस्पिटल के समान है जहां डॉक्टर्स अवेलेबल है और वहां जाओ अपनी नाड़ी दिखाओ, है ना। भक्त लोग होते यहाँ तो अपनी नाड़ी दिखाते हैं, अभी भक्त कहते ठीक है आप थोड़ा सा एडवांसमेंट कर रहे हो, अभी थोड़ा ढीला चल रहा है आपका भक्ति, सेवा ज्यादा करो, चैंटिंग करो। इस प्रकार से प्रभुपाद ने कहा ये मंदिर भक्तों के कारण ही मंदिर की शोभा है, इसलिए हमें जो भगवत भक्ति है वो भक्तों के संग में आकर करनी चाहिए, और भगवत गीता को भी भक्तों के संग में ही समझा जा सकता है, अकेले नहीं। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा एकाकी आमार नाहीं पाए बल, अकेले नहीं हो सकता। जो व्यक्ति कहता है भगवत भक्ति अकेले कर सकता हूं, वो व्यक्ति केवल अपने आप को धोखा दे रहा है या भक्ति करने का दिखावा या ढोंग कर रहा है, क्योंकि भक्तों की सहायता के बिना भगवत गीता को समझना वैसा ही है जिस प्रकार से प्रभुपाद लिखते हैं इंट्रोडक्शन में, शहर की जो बोतल है हाँ वो ढक्कन लगा हुआ है, लेकिन शहद को चखना है तो कोई व्यक्ति क्या करता है, अपना उसको चाटने लगता है बाहर से ही, क्या शहद का स्वाद पता चलेगा उससे, कदापि नहीं। लेकिन क्या करना होगा, ढक्कन खोलना पड़ेगा। ढक्कन खोलने का काम कौन करते हैं, भक्त करते हैं। इसलिए भक्तों को कहा जाता है ओपनर है, ओपनर होता है ना कोका कोला की बोतल खोलते हो, कोल्ड ड्रिंक्स ओपनर होता था, अभी तो पता नहीं, अभी तो प्लास्टिक के वो ढक्कन आ गए। तो दो भागवत कहे गए हैं, एक है भक्त और एक है भागवत, भागवत ग्रंथ और दूसरा है डिवोटी भागवत, भक्त भागवत। तो ग्रंथ भागवत को तब तक समझा नहीं जा सकता जब तक भक्त भागवत या डिवोटी की सहायता नहीं ली जा सकती, क्योंकि वो जो भागवतम ग्रंथ है वो उस डिवोटी का हार्ट है, हृदय है। क्या है, हृदय है। तभी भक्त के द्वारा ही भागवत ग्रंथ की चाबी डिवोटी के हृदय में है, भक्त के हृदय में है, उसके द्वारा ही गीता या भागवत आदि ग्रंथों को समझा जा सकता है। इसलिए देखो श्रील प्रभुपाद से पहले कितने सारे भगवत गीताएं थी, श्रील प्रभुपाद को मिलने एक अमेरिकन श्री आए और उन्होंने पूछा स्वामी जी मुझे भगवत गीता पढ़नी है, कौन सी भगवत गीता पढ़ो। प्रभुपाद ने कहा अभी तो 700 से अधिक गीता के अलग अलग टीकाएं और अनुवाद हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रामाणिक भगवत गीता है। भगवत गीता पढ़ने का रिजल्ट क्या है, गीता के आखिर में कृष्ण कहते ना अर्जुन, अर्जुन को भगवान ने कहा यथेच्छसि तथा करो, हे अर्जुना तुम्हें जैसा चाहे वैसे करो, अभी मैंने सारा ज्ञान दे दिया तुम्हें, युद्ध करना है नहीं करना है किसकी जिम्मेदारी, तुम्हारी। भगवान कभी फोर्स नहीं करते। तो फिर अर्जुन कहता है अर्जुन उवाच नस्त मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादेन मयाच्युत, तो वो कहते हैं कि नस्त मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, हे कृष्ण आपका ये जो दिव्य संदेश मैंने सुना है ना, तो इससे मेरा मोह नष्ट हो गया है और क्या प्राप्त किया है, स्मृतिर्लब्ध्वा, स्मृति आ गई है। और असली स्मृति प्राप्त करना मतलब क्या, ये जानना कि कृष्ण मेरे प्रभु है और मैं उनका सेवक हूं। यह आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार का मतलब यही है कि एक जीव पे एक व्यक्ति को यह रियलाइज होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए कि वास्तव में कृष्ण प्रभु है, कृष्ण मास्टर है, स्वामी है, नाथ है, और मैं उनका नगण्य क्या हूं, एक तुच्छ सेवक हूं। इसकी अनुभूति केवल जिह्वा से नहीं, इसकी अनुभूति हृदय में अनुभव करता है भक्त, वो वास्तव में आत्म साक्षात्कार है। तो इस प्रकार से अर्जुन ने सुनने के बाद कहा कि जो आप कह रहे हैं वही मैं क्या करूंगा, प्रयास करूंगा पालन करने का। तो इस प्रकार से भगवद गीता कि कई सारे अनुवाद थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति गीता पढ़ने के बाद कृष्ण की शरण नहीं ग्रहण कर रहा था, लेकिन जब प्रभुपाद आए, प्रभुपाद वो ओपनर है जिन्होंने भगवद गीता का अनुवाद दिया, और हर कोई व्यक्ति सरलता से इसको पढ़कर भक्त बनने लगा, समझने लगा, छोटा से छोटा बच्चा भी बोलने लगा। हम किसी दूसरे एक संस्था में बीच में गए थे, तो वहां मुझे वहां के जो डिवोटीज थे वहां के लोग कहते हैं कि हमारे मठ मंदिरों में तो प्रवचन आदि देने के लिए मेन गुरु ही देते हैं, लेकिन इस्कॉन में छोटा बच्चा भी आकर बोलने लगता है। कि नहीं देखा ना, इस्कॉन में गोपाल पंत स्कूल के बच्चे भी गीता का उच्चारण करते हैं, हर कोई प्रवचन देता है ना, कृष्ण कथा करता है। तो ये खासियत क्या है भगवद गीता प्रभुपाद के द्वारा? हाँ क्यों? क्योंकि भगवद गीता के जो रहस्य है, हाँ, प्रभुपाद ने बहुत सरल रूप से सारे जगत के सामने प्रस्तुत किया, और कोई भी व्यक्ति इसको केवल पढ़ता है तो भक्त बनता है। इसलिए भगवान जोर देते हैं, भगवान कहते आह्वान करते हैं कि कोई व्यक्ति इस नॉलेज को समझता है और दूसरों को वितरण करता है। चैतन्य महाप्रभु की यही तो देन है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करे कर पर उपकार। जिस व्यक्ति ने भारत में जन्म लिया है उसका क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है उसका, अपना जन्म सार्थक करो। पहले समझो कि मेरा लाइफ किस लिए बना है, हा? क्या करना चाहिए मुझे, क्या मेरे जीवन का लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए उसको गंभीरता से भक्ति करनी होगी, समझना होगा भक्तों की संगति में, और इतना ही नहीं साथ साथ क्या करना होगा, उसे दूसरों को भी जोड़ना होगा, हा? कर पर उपकार। तो एक भक्त के अंदर 26 गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं? 26। 26 गुणों में एक गुण है सर्व उपकारक। कौन सा गुण है? सर्व उपकारक। जो भक्त है कभी मतभेद नहीं रखता, उपकार करने की भावना उसके सबके प्रति है। इसलिए प्रभुपाद को कहा जाता है पंडिता समदर्शन। गीता में वर्णन आता है ना, भगवान कहते कि पंडित व्यक्ति कौन है, जो व्यक्ति शुनि चैव शोपा केच विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गवि हस्तिनी। शुनि चैव शोपा केच पंडिता समदर्शिना। विद्या नॉलेज का फल क्या है? विनय होना चाहिए, विनम्रता आनी चाहिए, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। विद्या विनय संपन्न, विद्या की संपन्नता है विनय, विनम्रता। तो जो व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, कुत्ता, चांडाल, हाथी, इन सबको एक दृष्टि से देखता है वो कौन है? पंडित है। तो क्या देखता है उनमें? आत्मा देखता है, एक रूप में देखता है। तो प्रभुपाद वास्तव में उस रूप को प्रस्तुत करते हैं। उनकी समदर्शिता क्या है कि उन्होंने कोई मतभेद नहीं रखा, हर एक व्यक्ति को कोई जाति पाति आदि का विचार नहीं किया, स्त्री पुरुष युवा बालक वृद्ध आदि, हर व्यक्ति के लिए जो भी इस पृथ्वी में है, हर एक व्यक्ति के लिए उन्होंने की कृष्ण भक्ति थी, ये वास्तव में उनकी समान दृष्टि थी। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है उसका एक गुण है सर्व उपकारक, वो वो दूसरों के ऊपर उपकार करता है। लेकिन सबसे बड़ा उपकार क्या है? एक व्यक्ति को भगवान कृष्ण के साथ जोड़ना। तो इन श्लोकों में भगवान कहते हैं, नच तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतमः। भगवान कहते हैं उससे अधिक मुझे कोई प्रिय नहीं है। किससे? जो व्यक्ति इस ज्ञान का वितरण करता है, यही तो सबसे बड़ा दान है। इस संसार में सबसे बड़ा दान क्या है? इस नॉलेज का वितरण करना। इसलिए उद्धव को श्रीमद् भागवत में, ये तो अर्जुन को भगवान ने गीता सुनाई, इसको भगवत गीता कहते हैं। भागवत में दूसरी गीता है। हम भगवान इस जगत को छोड़कर जाने वाले थे उस समय उद्धव को उपदेश देते हैं। हाँ, वो एडवांस वर्जन है भगवत गीता का, उसको कहते हैं उद्धव गीता। तो उसमें भगवान कहते हैं अर्जुन को दक्षिणा ज्ञान संदेशा, कि हाँ हमारे ऊपर भगवान की कृपा या आध्यात्मिक गुरु की जो कृपा है उसका कर्जा हम चुका नहीं सकते। गुरु का कर्जा जीवन में कभी भी नहीं चुका सकते, क्योंकि उन्होंने क्या दिया है? भगवान दिया है हमें, एक प्रकार से भगवान प्रदान किया है। तो उनका ऋण कभी भी हम चुका नहीं सकते। प्रभुपाद को पूछा उनके शिष्यों ने, हम क्या करें? आपने हमारे लिए, हम तो म्लेच्छ थे, अधम पति चंडाल से भी गए गुजरे, आपने हमें इतने वैष्णव पद पर लाके खड़ा कर दिया है। हाँ, तो प्रभुपाद ने कहा गुरु का जो ऋण है कोई भी शिष्य कदापि चुका नहीं सकता, बल्कि प्रयास कर सकता है केवल उनकी प्रसन्नता के लिए है, गुरु की जो शिक्षा है, कृष्ण का जो संदेश है वो आगे बढ़ाने का। इसलिए अर्जुन उद्धव को कृष्ण कहते हैं दक्षिणा ज्ञान संदेशा। गुरु को असली दक्षिणा क्या दे सकता है एक शिष्य? हाँ, ये कृष्ण भक्ति का प्रचार करना, दूसरों को ये जो नॉलेज है वो आगे बढ़ाना, इससे ही थोड़ा सा वो मुक्त हो सकता है। इसलिए तो जब प्रहलाद महाराज के लिए भगवान नरसिम्हदेव इस जगत में प्रकट हो गए, नरसिम्हदेव ने कहा कि चलो आप मेरे साथ, तो प्रहलाद कहते नहीं, आपके साथ मैं नहीं जाऊंगा। आपको भी भगवान कहे चलो तो आप में से कितने लोग हैं चलने के लिए तैयार? हाथ ऊपर कीजिए। सब लोग तैयार हैं, मुश्किल है। वो कैलाश स्टोरी सुना है ना, कैलाश और नारद, कैलाश तो तैयार नहीं था। अभी आपको कहा जाए आज मंदिर से बाहर नहीं जाना है, शाम को गीता भवन में ही, तो आपको यहाँ विश्राम करना है, तो हम तो नहीं जा सकते। हम तो सोचेंगे नहीं कल आएंगे प्रभुजी, तैयारी करके आएंगे, है ना, तो इतना इजी नहीं है। तो वैसे ही नारद प्रहलाद को भगवान नरसिम्हदेव ने कहा, तो प्रहलाद कहते कैसे मैं आ सकता हूं वापस आपके साथ? प्रहलाद ने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि मेरा जो सबसे पहला कर्तव्य है अपने जीवन में, क्या कर्तव्य है? कहते मेरा जन्म आसुरिक परिवार में हुआ था, हिरण्यकश्यप के परिवार में, और वो तुलना करते अपने पारिवारिक लोगों की, वो कहते मेरा जन्म एक ऐसे कुएं में हुआ जिस कुएं में केवल सांप ही रहते हैं। क्या रहते हैं? सांप। उसमें मेरा जन्म हुआ और वो हमेशा ईर्ष्या करते हैं एक दूसरे से। सांप का कुछ आप बिगाड़ते नहीं तभी वो काट लेता है, ईर्ष्यालु है। कुछ लोग ईर्ष्यालु होते हैं ना, कुछ भी नहीं करो आपको तंग करते रहेंगे, सांप का नेचर होता है उनका। तो वैसे ही प्रहलाद कहते ऐसे लोगों के बीच में मेरा जन्म हुआ और मेरी तो कोई गति नहीं थी, लेकिन आपके एक भक्त आ गए मेरे जीवन में। कौन थे? नारद। नारद का मतलब ही है, हाँ, नार का मतलब है नारायण, द का मतलब है देने वाले। जो भी नारद के संपर्क में आता है, नारद उसको किसको देते हैं? नारायण को देते। तो गुरु का मतलब या भक्त का मतलब क्या है? जो आपको कृष्ण प्रदान करे, कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण प्रसाद, कृष्ण सेवा, ये वास्तव में गुरु का काम है। हाँ, डिवोटी का काम है, कार्य है। तो नारद, उन्होंने कहा मेरे जीवन में नारद आए
और उन्होंने मुझे उस कुएं से उठा लिया, और उठा के इस पोजीशन में हो कि आपका नाम मैं उच्चारण कर पा रहा हूं, आपके नामों का गुणगान कर पा रहा हूं। इसलिए हे नरसिम्हदेव, आपकी सेवा करने से पहले मेरा ये कर्तव्य है। तव भृत्य सेवा, ये शब्द उन्होंने यूज किया, उन्होंने कहा तव भृत्य सेवा, आपका जो भक्त है उसकी सेवा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। हाँ, इसलिए प्रहलाद कहते हैं कि नारद का जो सेवा करना वो मेरा कार्य है, और नारद की सेवा क्या है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, नारद की यही तो सेवा है। नारद मुनि बाजाए विना राधिका रमन नामे, नारद मुनि एक विना रखते हैं और उस विना भगवान कृष्ण ने उनको दी है, उसको लेकर वो घूमते रहते हैं और क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये प्रथम कर्तव्य है एक भक्त का, एक शिष्य का, कि इस कृष्ण का जो संदेश है उसका प्रचार करना। प्रचार करने का मतलब है कि दूसरों के लिए जीना सीखना। हम अपना पूरा जीवन बिताते हैं केवल अपने लिए जीते हैं, है ना, सुबह से शाम तक किसके चिंतन करते आदि काम, अपने बारे में सोचते हैं। जितना अधिक हम अपना चिंतन करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने लिए योजना बनाते हैं, उतने अधिक हम सुखी नहीं होते, उतने अधिक दुखी होते हैं। जितना अधिक हम दूसरों के लिए कुछ करेंगे उसी को श्रेयस्कर कहा गया है, हाँ कीर्तिमान व्यक्ति कहा गया है। इसी कारण से तो भागवतम में वर्णन आता है, किसका वर्णन आता है, दधीचि मुनि का। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि किस प्रकार से छठे स्कंद में जब इंद्र एक यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ को करने के लिए उन्होंने विश्वरूप नामक जो ब्राह्मण है उनको बुलाया था, जिनके तीन सर थे, और ये विश्वरूप का संबंध दोनों परिवार से था, आसुरों के परिवार से, देवताओं के परिवार से। तो अभी वो पुरोहित थे इंद्र के, देवताओं के, तो वो जब यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ में आहुति डालते हैं ना स्वाहा, तो केवल देवताओं के लिए डालनी चाहिए थी, लेकिन वो दूसरे मुंह से मंत्र उच्चारण कर रहे थे आसुरों के लिए भी, और आहुति किसके लिए भी डाल रहे थे, आसुरों के लिए भी, दोनों बलवान हो। तो इंद्र को जो पता चला ये ब्राह्मण दोनों तीनों मुखों का इस्तेमाल कर रहा है, आसुरों के लिए भी आहुति, देवताओं के लिए भी आहुति। वो कहते ना जब कोई व्यक्ति होते ना उस समाज में जाते तो वैसा बोलेंगे, उनके जैसा हो जाएंगे, इस पार्टी में आएंगे इस पार्टी वाला हो जाएंगे, तो वैसे विश्वरूप। तो फिर इंद्र ने लगा, वो ब्राह्मण था, इंद्र ने लगा ये उचित नहीं है, इंद्र ने उसकी वाई गर्दन काट दी, गर्दन काटी तो ब्रह्म हत्या का जो महान पाप है वह इंद्र को लगता है। तो ये जो विश्वरूप थे उनके पिता जिनका नाम था त्वस्सा, उन्होंने एक यज्ञ किया जिससे एक आसुर उत्पन्न किया जिनका नाम था वृत्रासुर, किसको मारने के लिए, इंद्र को। तो इंद्र तो बहुत डरे हुए थे कि अभी मेरी मृत्यु निश्चित है। तो इंद्र का ये जो ब्रह्म हत्या का पाप था, ये पाप फिर इंद्र ने चार भागों में बांटा, पृथ्वी को ये अंश दिया पाप का, और वृक्षों को दिया, जल को दिया, और श्रेयों को दिया, चार जगहों में ये पाप इंद्र ने दे दिया। अभी भगवान का भजन करते हुए इंद्र ने प्रार्थना की, भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा किम दुरापम मई प्रीते तथापि विभुदर्श महा, भगवान कहते कि कोई व्यक्ति मुझे प्रसन्न करता है तो उस व्यक्ति के लिए कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो प्राप्त नहीं हो सकती, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है वो मेरी सेवा के अलावा किसी और वस्तु की इच्छा नहीं करता। कहते हैं कि वो व्यक्ति मूर्ख है जो मेरी सेवा करके कुछ भौतिक वस्तु की कामना करता है, और सेवा के बदले में जो उसको देता है वो भी मूर्ख है। अधिकतर लोग देवताओं की उपासना करते हैं, और क्या मांगते हैं उनसे, भौतिक भोग की कामना करते हैं, और उनके जो भोग है अंतवंत फलम तेषां तद भवति अल्पमेधसां। तो जो अल्प बुद्धि के लोग हैं वो इस भौतिक संसार के जो अशाश्वत सुख है उसको प्राप्त करने के लिए देवताओं आदि की उपासना करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि देखो इंद्र, उस वृत्रासुर को मारने के लिए तुम्हें क्या करो, एक महान ऋषि है दधीचि मुनि, उनके पास जाओ, उनका शरीर बहुत सुदृढ़ है तपस्या करके उनका शरीर, और उनके पास जाओ और उनको बोलो आपकी हड्डियां मुझे चाहिए, और हड्डियों से वज्र बनाओ और जिसके द्वारा इस वृत्रासुर का वध किया जा सकता है। देखो पूरे देवताओं का ग्रुप, जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं ना, वैसे हड्डियां ढूंढने के लिए गए, किसके पास, दधीचि मुनि के पास, और दान मांगने गए। हम दान मांगने में किसी के पास चावल मांगते हैं, किसी से धन मांगते हैं, कुछ वस्तु मांगते हैं। अब ये देवतागण उस मुनि के आश्रम के बाहर गए, मुनि के आश्रम का दरवाजा खटखटाया, मुनि को प्रणाम करते हुए के पास बैठे, और मुनि ने कहा बताइए सारे देवतागण आज मेरे आश्रम हमें आगमन आपका, तो कहते कि हम विशेष योजना लेके आए हैं, हम अभी कहते ना अभी गीता मैराथन चल रहा है, विशेष योजना आपके लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वो योजना क्या थी उनके, हे दधीचि मुनि आपकी हड्डियां हमें चाहिए। दधीचि मुनि हंसने लगे, उन्होंने कहा हे देवता पागल तो नहीं हुए, आप सोचो हड्डियां मांगी जा रही है, अभी हमारे पास कोई छोटा हमारा अपना मोबाइल कोई मांग ले तो भी हमें कितनी वेदना होती है, हड्डी तो बाद में, एक सर का बाल हम नहीं दे सकते किसी को, वहां तो हड्डियां। उन्होंने कहा देवताओं आपको मृत्यु की वेदना का कष्ट पता नहीं है, इस संसार में कोई भी जीव मरना नहीं चाहता, हर एक व्यक्ति के प्रयास इतने हैं कि वो जीवित रहना चाहता है, और आप लोग मुझसे मेरी हड्डियां मांग रहे हो, हड्डियां मांगना मुझे क्या करना होगा, शरीर को छोड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जे जे विष्णु नाम जीवा नाम आत्म प्रसही अपसितम, वो कहते कि इस संसार में हर एक जीव को आत्मा अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय है। हम किसी को बोले कि आपसे मैं बहुत प्रेम करता हूं वो ढोंग है, लेकिन अधिक से अधिक हम किससे प्रेम करते हैं इस संसार में, तो किससे, अपने आप से। सबसे अधिक प्रेम हम अपने शरीर से करते हैं, अपने बारे में अपने आप से प्रेम करते हैं। दधीचि मुनि कहते कि इवन विष्णु भी आ जाए किसी के पास और कहे कि आपका शरीर मुझे दान में दो, तो दधीचि मुनि कहते कि इस संसार में कोई व्यक्ति विष्णु को भी अपना शरीर देना नहीं चाहेगा दान में, और आप लोग मेरे पास आकर मेरा शरीर मांग रहे हो, हड्डियां मांग रहे हो। तो फिर देवताएं है क्या कहते हैं, कहते हैं कि जो परोपकारी जीवात्मा होता है वो दूसरों के कल्याण के लिए सब कुछ देने के लिए तत्पर होता है। तो फिर दधीचि मुनि वहां कहते हैं कि वास्तव में एक क्षण, ये शरीर क्षण भंगुर है। दधीचि मुनि ने कहा कि ये शरीर क्षण भंगुर है और ये शरीर हमेशा कष्ट देने वाला है, और इतना ही नहीं मृत्यु के बाद इसको तो गीद कुत्ते ये सब खाने वाले हैं, या राख में परिवर्तित हो जाएगा, जल जाएगा, मिट्टी बन जाएगी शरीर की। हाँ तो ऐसे शरीर को रखने से क्या लाभ है यदि दूसरों के हित में काम ना आ जाए, है ना। हम तो स्वार्थी हैं, निस्वार्थी नहीं है। निस्वार्थ भावना क्या है, बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरों के हित के लिए इस शरीर को लगाना। जैसे चंदन को जितना आप घिसते हो तो उसे सुगंध निकलती है, उसी प्रकार से जब आप भगवान की सेवा में इस शरीर को लगाते हो, दूसरों के हित के लिए इस शरीर को लगाते हो, तो यह सुगंधित होता है, मतलब कीर्तिमान होता है। अब देखो श्रील प्रभुपाद, उन्होंने अपने लिए नहीं जिए, किसके लिए जीवित रहे वो, दूसरों के लिए, सारे संसार के लिए उनका शरीर, सब कुछ। हाँ तो देख सकते हैं कि एक भक्त का स्वभाव होता है
परोपकार।
अन्यथा ये शरीर जिससे हम इतना अधिक प्रेम करते आसक्त है वह हमें सबसे अधिक कष्ट देने वाला है। इसी कारण से भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि क्या करना चाहिए व्यक्ति को, ये जो भगवत ज्ञान है इसको समझना चाहिए और इस भगवत ज्ञान को दूसरों को प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए बिना किसी हिचकिचाहट के। तो इसलिए कृष्ण कहते न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतमः, कि संसार में कोई अधिक व्यक्ति दूसरा मुझे कोई प्रिय नहीं है। तो हम किसी का प्रिय बनना चाहते तो हमें क्या करना होगा, जो वस्तु उस व्यक्ति को बहुत प्रिय है वो हमें करनी होगी। सोचो कोई पति है, हमें उसका प्रिय बनना है तो हमें पता करना होगा कि उसको उस व्यक्ति को क्या सबसे बड़ी क्या वस्तु प्रिय है। तो किसको पूछना होगा, पत्नी को जाके पूछना होगा ना, पति आपके पति को क्या में है पसंद है या क्या चीज प्रिय है। तो उसी प्रकार से भगवान क्या प्रिय है वो हम कहां से समझते हैं, भक्तों के माध्यम से और भगवत गीता से। तो इस प्रकार से भगवान इस अध्याय में या इस दो श्लोकों में हमें संदेश दे रहे हैं कि हमें प्रयास करना चाहिए अपने जीवन में भी इस ज्ञान को स्वीकार करने का और दूसरों को भी ये ज्ञान वितरण करने का। हाँ, ये भगवत गीता, तो ये महान यज्ञ अभी चल रहा है, तो प्रयास करें हम भगवत गीता दूसरों तक पहुंचाने का। एक फ्रांस में एक लेडी थी पेरिस में, वो ट्रेन से जा रहे थे, डिवोटी माता जी, वो बुक्स भरा हुआ एक बैग उसके पास था और वो कृष्ण बुक हाथ में उसने रखे थे और उस ट्रेन में वो वितरण कर रहे थे। तो जैसे वो ट्रेन में कृष्ण बुक उसने निकाला और उसने कहा कृष्ण बुक, तो एक व्यक्ति अचानक बड़ा हट्टा कट्टा सा सामने आ गया। उसने जैसे देखा ये कृष्ण बुक, उसको इतना गुस्सा आया, उसने एक थप्पड़ मार दी उस माता जी को, कृष्ण बुक ले और आय से फेंक दी और उसके ऊपर नाचने लगा। हाँ, उसको उसके पेजेस फट रहे थे और फिर वो व्यक्ति खुश होता है, कहते कि अच्छा किया मैंने आज। और वो जो माता जी है वो एक प्रार्थना कर रही थी कि हे कृष्णा, ये व्यक्ति जानता नहीं है क्या कर रहा है, आप इसको क्षमा कर दीजिए। और वो तो आगे जो स्टेशन आया वहां उतर गई, उसको खून वगैरह निकल रहा था लेकिन फिर भी ग्रंथों का वितरण कर रही थी। ये व्यक्ति ने वही बुक उसके हाथ में थी, गुस्से में अगले स्टेशन में उतरा, घर गया और पत्नी को कहा देखो आज मैं क्या करके आया हूं। हाँ, जो कोई ये सब धार्मिक कुछ ग्रंथ बेचने वितरण करने वालों को मैं अच्छा पाठ पढ़ा है और फिर देखो ये उनका बुक है। ऐसा वो फटा हुआ बुक था, पेजेस अलग अलग हो गए थे, अपने डाइनिंग टेबल में ऐसे फेंका, पत्नी तो डाइनिंग टेबल में फेंका तो वहां फिर ये सारे लोग तो घर के जो खा पी कर चले गए, वो फटी हुई किताब कृष्ण बुक वहीं पड़ी थी टेबल के ऊपर। तो वहां की नौकरानी आ गई सफाई करने के लिए, उसने देखा घर में फटा हुआ किताब है, ये बच्चों ने फाड़ दिया होगा। तो उस नौकरानी ने ग्लू लिया, एक एक पेज पूरा चिपका चिपका कर प्रॉपरली क्या कर दिया, जहां उनके घर की सारी किताबें थी वहां जाके रख दिया। अब इतनी बड़ी हरकत की थी उसने कि उसका सारा फैमिली उद्ध्वस्त हो गया। कुछ महीनों में उसकी पत्नी को ऐसी बीमारी हो गई जानलेवा कि वो एक साल के अंदर वो मर गई। फिर उसकी बेटी, फिर एक बेटा था उसका एक्सीडेंट हो गया और अभी उसके पास कुछ नहीं बचा था, पूरा फैमिली उद्ध्वस्त था, वो अकेला ही था, बहुत टेंशन में था, धन था, लेकिन उसने सोचा आत्महत्या करो। क्या सोचा उसने, आत्महत्या करता हूं, बेस्ट से सारे दुखों का समूल, दुखों से सब नष्ट हो सकता है, दुखों से मुक्त हो सकता हूं। तो उसने सोचा मृत्यु तो मरना ही है, उससे पहले बाइबल पढ़ता हूं। क्या पढ़ता हूं, तो नास्तिक था, गया अपनी किताबों के वो ढूंढने, नास्तिक तो बाइबल रखा नहीं था, लेकिन वहां कौन सी बुक मिली उसे? कृष्ण बुक। उसने कहा ये तो कुछ धार्मिक बुक लग रही है। अभी कई साल बीते थे, उसको याद नहीं था ये घटना। हाँ, और उसको ये भी याद नहीं था कि ये फटी हुई कोई बुक में गलती से लाया था और वो मेरे शेल्फ में लग गई है वहां। तो उस बुक को लिया, पूरी रात उस व्यक्ति ने कृष्णा बुक पढ़ी नॉन स्टॉप। और जब उसने वो दूसरे चैप्टर में पढ़ा, विशेष रूप से जब ये कंस देवकी को मारने के लिए उसके बाल पकड़ता है, तलवार निकालता है, तो जो संवाद हो रहा है ना वहां वसुदेव और कंस के बीच में, आत्मा का वर्णन, आत्मा के बारे में, मृत्यु के बारे में, इसे सारा वर्णन है उसमें। तो उस वो पढ़ के उसको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगी और वो कन्विंस हो गया। फिर उसने एड्रेस देखा कि कहाँ का एड्रेस है, वो देखा पेरिस में जो इस्कॉन टेम्पल है वहां का एड्रेस है। वो ढूंढते ढूंढते पहुंच गया वहां इस्कॉन टेम्पल। वो पहुंचा तो वहां उन्होंने कहा मुझे भक्त बनना है, ज्वाइन करना है आपका मंदिर, क्या करना है मुझे? ज्वाइन करना है, आप भी कराओ मुझे आज के आज। तो उन्होंने कहा अरे हम तो यह देखते रहते कि हमारा मंदिर का फैमिली कैसे पढ़े, बहुत कम भक्त होते हैं। तो खुश हो गए, और भी एक व्यक्ति आ गया। तो फिर उन्होंने रखा और उसको इंचार्ज बना दिया। किस चीज का इंचार्ज? तो गोडाउन का इंचार्ज। और फिर ये अच्छा भक्त बना। कुछ महीने बीते तो उस समय यूरोप के अलग अलग टेम्पल्स का एक सारे भक्त जो पुस्तक वितरण करते हैं उनका एक कोर्स वगैरह या कुछ सम्मेलन था। तो वह अलग अलग मंदिरों से भक्त वहां आ गए थे और वो माता जी भी वहां आ गए थे जिसने क्या किया था, एक बुक दिया था। जब ये व्यक्ति भी वहां पहुंचा तो वहां उस माता जी को देखा, ये तो आश्चर्य हो गया, गया उसको दंडवत मार दिया कि आपके कारण आज मैं क्या कर रहा हूं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये जो प्रभुपाद के ग्रंथ है इतने पावरफुल है, हम कन्विंस नहीं है, हमें उसकी पावर पता नहीं है। हाँ, लेकिन ये ऐसे ऐसे हजारों उदाहरण हम देखते हैं कि जिसके द्वारा हजारों हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन आ गया है। हाँ, एक एक सिंपल सा घटना बताता हूँ। एक डिवोटी एक ब्रह्मचारी कैसे बना एक भक्त। विदेशों में एक व्यक्ति था, ये जब ये हरे कृष्णा कीर्तन जो भक्त लोग करते हैं वो हमेशा उनका मजाक उड़ाते रहता था। अब जब कोई गाता है ना हरे कृष्णा पूरा मंत्र गाते हैं हम रोड पर, तो कुछ मस्ती वाले लोग होते हैं वो टेढ़ा मेढ़ा गाते हैं मजाक उड़ाते हुए गाते हैं। तो ऐसे एक व्यक्ति जो ये हरे कृष्णा करते रहता था मजाक में, और वो घर भी गया तो वहां भी जब उसकी पत्नी भोजन बनाती थी और डाइनिंग टेबल में जाके बैठता था, तो जब भोजन लेट हो जाता था तो अपना प्लेट उठाता था, चम्मच बजाता था और हरे कृष्णा गाते रहता था। तो उस समय वो तो मजाक कर रहा था, वो हरे कृष्णा वालों को चिढ़ा रहा था, उसको भी पता नहीं कि हरे कृष्णा क्या है। तो उसका बच्चा भी आके उसके सामने बैठता था, छोटा सा बच्चे को भी बोलता था तुम भी बोलो। तो वो बच्चा भी हरे कृष्णा बोलता था, वो भी अपना प्लेट लेके बजाते रहते। फिर ऐसे कई दिन, और अभी ऐसे नहीं कि एक दिन, हर रोज का ये आदत ही हो गई वो बच्चे को भी और पिता को भी। फिर फाइनली बच्चा जब बड़ा हो गया तो एक दिन वो कहां जा रहा था, देखा कि कुछ लोग रास्ते में जाकर करताल मृदंग बजाते हुए जोर जोर से हरे कृष्णा मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। तो ये गया उनके पास, वो कहते आप लोगों को कैसे पता हरे कृष्णा। वो एक भक्तों से मिला, वो भक्त कहता है हम तो यही करते दिन रात। उससे पूछा आप, वो कहते मैं तो बचपन से मेरे पिताजी के साथ एक करता रहता हूँ, गाता रहता हूँ। तो उसको फिर समझ में आ गया हाँ कि क्या है। तो इस प्रकार से जब हम प्रयास करते हैं, चाहे हमें योग्यता हो या ना हो, तो
हजारों लोगों के जीवन में बदलाव आ सकता है और एक भी व्यक्ति कृष्ण के शरणागत हो जाता है तो हमें अत्यधिक उसका लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार से फाइनली जो ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज जब अपने माता के पास गए, उनके सौतेली माँ ने उनके पिता उत्तानपाद के गोद से खींच के नीचे जमीन पर डाल दिया, कहा तुम्हें तो अधिकार नहीं है उनके गोद में बैठने का, हाँ तुम्हें तो मेरे कोख से जन्म लेना होगा। तो ये तो गुस्से में आके ध्रुव महाराज अपनी माता के पास जाते और कहते भगवान कहाँ मिलेंगे। अभी वो उनकी माता तो कही, माता ने कहा भगवान तो जंगल में मैंने सुना है, जैसे पुराने समय में भगवान कहाँ मिलते थे, जंगल में। तो माता ने कहा बेटा मैंने तो सुना है जंगल में होते भगवान। ये गए जंगल की ओर दौड़ते हुए, फिर भगवान ने देखा छोटा सा बच्चा मुझे प्राप्त करने के लिए नारद को भेजा, नारद जाओ वो मेरी ओर आ रहा है उसको गाइड करो। नारद गए, ए बच्चे रुक। वह ध्रुव को कहते कि कहाँ जा रहे हो, भगवान को ढूंढने जा रहा हूं। कहते अरे तुम तो राजकुमार हो, वहां तो शेर है कांटे हैं। इन्होंने कहा देखो भगवान के बारे में बताना चाहते हो तो बोलो, नहीं तो रास्ते से हट जाओ। नारद ने देखे तो पक्का भक्त है, फिर नारद ने उनको उपदेश दिया मधुवन मथुरा के पास, उनको तपस्या करने के लिए कहा, कृष्ण के विग्रह बनाया मिट्टी से। ध्रुव ने ओम नमो भगवते वासुदेव का जप किया, 6 महीने में भगवत प्राप्ति हुई। जब उनको भगवत धाम ले जाया जा रहा था, वैकुंठ से विमान आया, तो उन्होंने पूछा मेरी माँ भी तो जा रही कि नहीं, तो उनके जो दूत थे भगवान के जो दूत थे, उन्होंने विष्णु दूतों ने कहा कि देखो आपकी मदर भी क्या कर रही है, दूसरे विमान से वैकुंठ जा रही है। तो मतलब थोड़ा सा हेल्प किया था किसको, ध्रुव को। तो उसी प्रकार से हमारे अंदर योग्यता हो या ना हो, लेकिन हम इस प्रचार कार्य में, इस ग्रंथ वितरण में या लोगों को भगवत भक्ति से जोड़ने में थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, तो हमें भी हम ध्रुव की माता के समान ये बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। हाँ, इसलिए ये अमेजिंग महीना है जिसमें हमें प्रयास करना चाहिए अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। और हम प्रयास करते हैं, कृष्ण केवल हमारा प्रयास देखना चाहते हैं, कृष्ण सारे आशीर्वाद के साथ हमारे साथ हैं। तो इस प्रकार से सार यही है इन श्लोकों का, भगवान के हम प्रिय बनना चाहते हैं तो भगवान कहते हैं कि क्या करो, मेरे इस ज्ञान का वितरण करो, हाँ जो इन ग्रंथों में अवेलेबल है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राष्ट्रमद भगवद गीता के समवेत गौर भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे।